घर हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने स्टूडियो को देखते हैं। आदाब अर्ज़ है।
जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया अंजलि जी।
नरेन, कैसी रही तुम्हारी छुट्टियाँ और कैसे हैं घर पर सब लोग?
अंजलि, मुझे तो घर पर बहुत मजा आया और घर पर सब ठीक हैं। अच्छा अंजलि, मैंने सुना है पिछले दो एपिसोड में नवीन ने तुम्हें बहुत परेशान किया।
हाँ नरेन, तुम्हारे दोस्त ने मुझे परेशान किया भी और नहीं भी, लेकिन उसने हमारे श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। अब जब हमारे श्रोता खुश तो मैं भी खुश।
खैर, अब मैं वापस आ गया हूँ तो डोंट वरी, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा।
तो कार्यक्रम आगे बढ़ाएं?
बिल्कुल अंजलि।
अच्छा नरेन, एक बात बताओ, क्या शादी से पहले लड़की से उसकी मर्जी पूछी जानी चाहिए?
भाई बिल्कुल पूछी जानी चाहिए।
तो फिर क्यों आज भी देश में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी का फैसला उनके माता पिता उनकी मर्जी जाने बिना ही कर देते हैं? और नरेन, इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में तो लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है।
अंजलि, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और जो लोग अपनी बेटियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर देते हैं वो शादी नहीं, वास्तव में अपराध करते हैं, और कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान है। हम कार्यक्रम में इस विषय पर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम और आप सुनेंगे धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना चंदर और गजेंद्र राजेश की मदद से दयाल पांडे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। उधर गांव में हरेंद्र मधु को उसकी परीक्षा दिलवाने हरिद्वार लेकर जाता है, और इधर नीलम दीदी छुटकी को महिला मंडल में शामिल करने के लिए इस शर्त पर हाँ कहती हैं कि उसे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी होगी। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
भैया कुली, हाँ इधर 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 चार नंबर।
गज्जू,
आ
गज्जू, सामान निकाल ले।
अरे हाँ, अरे
हाँ,
उठा।
हाँ,
अरे इधर लो भैया, ये भी लो, ये
पकड़ गज्जू, पकड़।
हाँ हाँ, लाओ लाओ, ये ले
लो भाई। दिल्ली तो आ गए,
और बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला।
हाँ वो तो है।
चंदर यार, अब हमें चलना चाहिए ना।
लेकिन तुम दोनों दिल्ली में करोगे क्या और रहोगे कहाँ?
राजेश जी, अभी तो फिलहाल हम दोनों अपने पुराने मालिक के पास जाएंगे, वो बहुत अच्छे आदमी है, हो सकता है हमें फिर से काम पर रख लें।
और जहाँ तक रहने की बात है तो अपने पुराने दोस्त के यहाँ एक दो दिन रह जाएंगे।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम दोनों को पुरानी नौकरी वापस मिल जाएगी।
राजेश जी, कविता जी, आप दोनों ने मुंबई जैसे अनजान शहर में हमारी बहुत मदद की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे गजेंद्र, ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम भी अजनबी शहर में प्रवासी थे और कविता भी, अब भला एक प्रवासी दूसरे प्रवासी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा?
राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसी सोच उन सभी लोगों की हो जाए जो गांव से आकर शहरों में रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी प्रवासी इंसान को शहर में आने के बाद इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही कहा गजेंद्र तुमने। अच्छा, तुम दोनों हमारी शादी में तो आ रहे हो ना?
मैं तो जरूर आऊंगा।
और गजेंद्र, तुम?
दिल तो बहुत चाहता है कि मैं आपकी शादी में आऊं, लेकिन काफी दिनों से परिवार से मिला नहीं हूं, इसलिए अपने बीवी बच्चों से मिलने गांव जाना चाहता हूं।
कोई बात नहीं, लेकिन अगर समय मिले तो गांव से ही सीधे भाभी और बच्चों को लेकर शादी में आ जाना।
हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल।
अच्छा अब हम चलते हैं, हमें भनज के लिए बस लेनी है।
अच्छा गजेंद्र, चंदर, नमस्ते। हाँ
शिव, नमस्ते।
नमस्ते।
फूलमती बहन, अरे ओ फूलमती बहन।
अरे सेठ जी, आप आइए आइए, बैठिए।
मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। देख फूलमती बहन, अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। उस दिन तो तेरी बुआरी बड़े ताव में मुझे पुलिस में ले जाने की धमकी देकर गई थी, हुँ? और मैं चुप रह गया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं पंचायत बिठाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ
सेठ जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे हरिंद्र, तू ये क्या कह रहा है?
सही कह रहा हूँ मामा। सेठ जी, आप एक काम कीजिए, घर जाइए और आराम से बैठिए, शाम तक सूद समेत आपके सारे पैसे मिल जाएंगे।
अरे तो हरेंद्र बेटा, मुझे कौन सा शौक है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर रोज रोज आऊं? वो तो मेरे पैसे।
अरे कह दिया ना, शाम तक मिल जाएंगे।
अच्छी बात है, पर अगर शाम तक मेरे पैसे नहीं मिले तो सोच लेना फिर। हाँ,
और हाँ सेठ जी, आप मधु के जेवरों को जरा निकाल कर रखिएगा।
हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, शाम को आकर पैसे दे जाना और अपने जेवर ले जाना।
जी सेठ जी।
भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, पैसों की जरूरत हो तो ऐसे बन जाते हैं जैसे दुनियादारी का कुछ पता ही ना हो, और वापस मांगो तो आंखें दिखाते हैं।
छोटे
जी नारायण भैया,
जल्दी ऑर्डर टेबल नंबर 5 पे पहुंचा। पता नहीं चंदर को मुंबई जाने की क्या सोची, साहब ने कितना मना किया था, मेरा आधा काम संभाल लेता था।
नारायण
लो मेरे कान भी बजने लगे।
नारायण,
अरे चंदर, गजेंद्र, तुम दोनों यहाँ? अभी मैं तुम दोनों को ही याद कर रहा था। और सुनाओ, तुम दोनों की मुंबई वाली नौकरी कैसी चल रही है?
कुछ नहीं यार, बस जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए।
मतलब
वहाँ पर कोई बात नहीं बनी यार।
अरे नारायण, छोटू, अरे कहाँ मर गए ये दोनों?
नमस्ते सर।
अरे चंदर, गजेंद्र, तुम दोनों यहाँ? अरे कैसे हो तुम दोनों?
ठीक है सर।
और तुम्हारी मुंबई वाली नौकरी कैसी चल रही है?
सर वो
आपसे कुछ बात करनी थी सर।
हाँ हाँ बोलो
जी। वो क्या हमें हमारी पुरानी नौकरी वापस मिल सकती है सर?
लेकिन फिर तुम्हारी मुंबई वाली नौकरी का क्या होगा?
सर वो सब झूठ निकला सर, वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा हमें बताया गया था।
भाई मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन अगर मैं उस वक्त तुमसे ये कहता तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। और मुझे तो ये भी पता था कि तुम दोनों वापस जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह अभी तक किसी को नहीं रखा। तुम चाहो तो आज से ही काम शुरू कर सकते हो।
जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर।
सर एक छोटी सी बात और थी।
हाँ हाँ बोलो चंदर।
सर वो क्या है ना कि एक साल हो गया है हमें अपने परिवार से मिले हुए, अगर हम एक हफ्ते बाद नौकरी पर आए तो?
देखो चंदर, मुझे तुम दोनों का काम पसंद है, इसलिए तुम्हारी नौकरी यहाँ सुरक्षित है, तुम जब चाहो यहाँ वापस आकर काम कर सकते हो।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
हरेंद्र बेटा, तू इतना पैसा लाएगा कहाँ से?
माँ तू फिक्र मत कर, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है।
भगवान तेरा भला करे, अब तो इस परिवार को तेरा ही सहारा है। अरे ये मधु कहाँ रह गई?
आ रही है माँ, वो बाहर फुलिया से बात कर रही है।
नमस्ते माँ जी।
अरे आ गई मधु, अब बता कैसी हुई तेरी परीक्षा?
बहुत अच्छी रही माँ जी, सारे सवाल हल कर दिए मैंने।
अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता तेरा रिजल्ट कब आएगा?
माँ जी वो तो अगले हफ्ते आएगा।
चल ठीक है, अब तू थक गई होगी, अंदर जाकर कुछ खा पी ले।
जी माँ जी।
अच्छा माँ, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है।
किस बारे में?
तू सुन तो, आज मुझे वो पास वाले गांव के लालू चाचा मिले थे।
लालू चाचा, वो तुझे कहाँ मिल गए? वो तेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे।
अरे जब मधु परीक्षा दे रही थी तो मैं समय बिताने बाजार चला गया, बस वहीं वो भी टकरा गए।
अच्छा क्या कह रहे थे? अरे हाँ उनका एक बेटा भी है ना, अब तो शायद काफी बड़ा हो गया होगा।
हाँ माँ उसी के बारे में बात करनी है, कह रहे थे लड़के ने बीए कर लिया है और अब कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा है।
अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ वो तो है, मैं सोच रहा था कि अपनी छुटकी का रिश्ता उस घर में हो जाए तो कैसा रहेगा।
बेटा कह तो तू ठीक रहे, पर हमारी छुटकी तो अभी 18 की भी नहीं हुई और इस उम्र में।
अरे माँ तू ही तो छुटकी की शादी कराना चाहती थी और अब?
हाँ मैं छुटकी की शादी कराना चाहती थी लेकिन अब नहीं। बेटा ये जरूरी तो नहीं कि इंसान बुढ़ा हो तो उसकी सोच भी बुढ़ी हो जाए, बदलते जमाने के साथ हमें खुद को भी बदल लेना चाहिए। तू एक काम कर, तू लालू भाई सबसे बात करके देख, अगर साल दो साल रुक जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, तब तक उनका लड़का नौकरी पर भी लग जाएगा।
हाँ मैं इस बारे में उनसे बात करके देखूंगा।
अच्छा चल ये बातें तो होती ही रहेंगी, पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले।
हाँ माँ बहुत जोर से भूख लगी है।
गज्जू यार बस आने में तो अभी आधा घंटा है।
हाँ
तब तक हम यहीं बैठकर इंतजार कर लेते हैं।
अच्छा चंदर, अरे तूने अपने घर वालों को बता दिया ना तू घर वापस आ रहा है?
नहीं यार मैं सोच रहा हूँ अचानक घर पहुंचकर उन्हें हैरान कर दूं।
अच्छा
गज्जू कभी कभी सोचता हूँ यार कि शहर में आने के बाद मुझसे कितनी सारी गलतियां हुई यार, क्या सभी लोग जो शहर आते हैं ऐसी ही गलतियां करते होंगे?
नहीं चंदर सभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग जो तेरी तरह अपनी आंखों में सुनहरी जिंदगी के सपने सजाए अपनी मंजिल से भटक जाते हैं और एक ऐसी अंधेरी गली में खो जाते हैं जहां रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती, वापस मुड़कर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो लोग कहां जा रहे हैं। पता है चंदर, इंसान बिल्कुल हिरण की तरह है। जैसे हिरण को मालूम नहीं होता ना कि कस्तूरी उसके अंदर छुपी है, और वो जंगल जंगल कस्तूरी की खुशबू में भटकता रहता है। बिल्कुल इंसान भी उसी की तरह है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुझे तेरी गलतियों से सबक मिल गया होगा और तू ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा।
अरे नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैंने तो सोच लिया है कि इस बार जब आऊँगा तो मधु को भी अपने साथ लेकर आऊँगा और उसके साथ बीती सारी बातें भुलाकर जिंदगी को एक नए सिरे से जीने की कोशिश करूँगा।
ये तूने बहुत अच्छा सोचा। अरे चंदर बस आ गई।
हाँ चल चल चल,
सामान उठा यार, ये ला, पकड़ पकड़ अपना बैग, जल्दी जल्दी
पकड़, चल 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 चल। अरे
आराम से आराम से लाओ, लाओ ये मुझे मुझे दो सामान
ये लो। बहुत गर्मी है ना राजेश। हा? वो देखो पिताजी।
अरे हाँ
पिताजी, पिताजी यहाँ।
अरे कविता बेटी, मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था।
नमस्ते पिताजी।
नमस्ते पिताजी।
खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो।
क्या पिताजी आप अकेले आए हैं, माँ और छोटू नहीं आए?
बेटा तेरी माँ घर के बाकी कामों में घिरी थी और छोटू पता नहीं कहाँ खेलने चला गया।
और सुषमा?
अरे बेटा वो तो कल रात से सो ही नहीं, अपने जीजा जी के स्वागत के लिए पूरे घर को सजा रही है।
अच्छा पिताजी।
ला बेटा अपना सामान दे दो।
अरे ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी, मैं लेकर चल रहा हूँ ना।
नहीं राजेश बेटा, अब तुम हमारे यहाँ मेहमान हो और मेहमानों का ख्याल रखना हम पहाड़ी लोगों का धर्म होता है बेटा।
क्या पिताजी, एक ही पल में आप मुझे बेटा बना लेते हैं और दूसरे ही पल में मेहमान बनाकर पराया कर देते हैं।
अरे बाबा ठीक है ठीक है, पर कम से कम ये छोटा वाला बैग तो मुझे दे दो, मुझे अच्छा लगेगा बेटा।
ठीक है ये लीजिए।
हाँ लाओ, चलें कविता बेटी।
जी पिताजी चलिए ना।
चलिए।
कविता बहुत खुशकिस्मत है।
क्यों भाई?
आखिर उसकी शादी उसकी मर्जी से जो हो रही है।
वो तो है।
काश हर माता पिता इस बात को समझ पाते कि शादी लड़की की पूरी जिंदगी का फैसला होता है।
और अंजलि इसी विषय पर हमारे सामुदायिक संवाददाता लोगों से बात करने वाले हैं।
आज के दौर में लड़की की मर्जी पूछी जानी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती हैं, इसलिए वो अपना भला बुरा सोचकर ही शादी के लिए राजी होती हैं। अगर शादी के बाद लड़के के घर में अगर अचानक प्रॉब्लम आ जाती है तो लड़की पढ़ी लिखी होगी और शादी से पहले उसकी मर्जी पूछी गई हो तो वो जॉब कर सकती है और घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है।
मुझे लगता है कि शादी से पहले लड़की की मर्जी पूछना बहुत ज़रूरी है। यह 21वीं सदी है, वह ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो दिन साथ रहना है, आपको अपनी पूरी लाइफ होल लाइफ आपको एक साथ गुजारनी है, तो आपके विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक आपको पूछना चाहिए।
जी हाँ, लड़की की मर्जी पूछी जानी चाहिए, क्योंकि आज के युग में लड़कियाँ पढ़ी लिखी और समझदार हैं। आज की लड़कियों को अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। मैं मानती हूँ कि माता पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की भावनाओं को नहीं समझते। माता पिता भी यही मानते हैं कि बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी है।
बिल्कुल लेनी चाहिए, लड़की की जिंदगी का सवाल होता है पहले तो, फिर उसके ऊपर पूरी लाइफ एक डिसीजन पे निर्भर हो जाती है कि हो सकता है वो ना करना चाहती हो, ठीक है उसे लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है, हो सकता है लाइफ में आगे कुछ करना चाहती हो, पढ़ाई करना चाहती है कुछ, कि घर वालों की जबरदस्ती वजह से कई बार लड़कियां हाँ बोल देती हैं तो वो गलत है।
देखिए ये जरूरी है कि लड़का और लड़की जीवन भर भर साथ रहते हैं, तो लड़का अगर लड़की से पूछे कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं हूँ, तो लड़की से भी पूछना चाहिए कि लड़का उसे पसंद है या नहीं, दोनों ने साथ बिताना है, दोनों का जीवन एक साथ चलता है। और लड़की से यदि अगर स्पेशल ही पूछा जाए, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ के जाती है, तो लड़के एक अनजान लड़के पे, एक अनजान परिवार पे उन्हें बहुत विश्वास हो जाता है और एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि लड़के से ना पूछा जाए, बल्कि पर लड़की से ज़रूर ही पूछना चाहिए।
दोस्तों ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब।
वैसे अंजलि, ऐसा भी नहीं है कि सभी माता पिता एक जैसे होते हैं। कुछ इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं कि शादी उनकी बेटी की जिंदगी का वो फैसला है जिसे करने का अधिकार उनकी बेटी को भी है।
नरेंद्र, तुम किसकी बात कर रहे हो?
अंजलि, मैं बात कर रहा हूँ आज की हमारी मेहमान की, जिन्होंने अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी की और उनके इस फैसले को उनके माता पिता का भी पूरा पूरा आशीर्वाद मिला।
बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए।
नमस्कार मंजू जी, आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम मंजू विष्णु है, मैं उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल ब्लॉक नैनडांडा ग्राम सिला तल्ला की रहने वाली हूँ। मैं इस समय नई दिल्ली ईस्ट विनोद नगर में मकान नंबर 416 में अपने परिवार के साथ रह रही हूँ।
अच्छा मंजू जी, क्या शादी से पहले आपकी मर्जी पूछी गई थी?
जी हाँ, शादी से पहले मेरे परिवार वालों ने मेरी मर्जी पूछी थी, क्योंकि इसमें हमारे पूरे परिवार की सहमति थी, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। मुझे मेरे मम्मी पापा ने पहले ही कहा था कि अगर बेटा तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो मजबूरी नहीं है, हम तुम्हारे पे कोई रिश्ता नहीं थोप रहे हैं। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं या कोई बात बुरी लगी हो या कुछ पसंद नहीं आया तो तुम बता देना कि नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर मंजूर है तो हाँ कहना, फिर तभी हम शादी के लिए आगे बात बढ़ाएंगे।
जब पहले आपके लिए रिश्ता आया तब आपकी उम्र क्या थी?
जब शुरू में मेरे लिए एक रिश्ता आया था उस समय मैं 12th पास कर चुकी थी और मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी और मैं ग्रेजुएशन करना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा हो गया कि लड़की ग्रेजुएशन या मतलब पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अब जब तक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अपने परिवार को कैसे संभालेगी। फिर मैंने उस टाइम मतलब मैंने मन वो कर दिया कि अभी ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ।
और तब आपने क्या किया?
तब मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर परिवार वालों की मर्जी को ध्यान में रखकर मैंने शादी के लिए हाँ की और मेरे परिवार वालों ने भी मेरी मर्जी को ध्यान में रखकर ही मेरी शादी करवाई। जहाँ मतलब मैंने रिश्ते के लिए हाँ की उसी जगह मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी करवाई।
और अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
हाँ, मैं अपने श्रोताओं को यही कहना चाहती हूँ कि हर काम में, चाहे काम छोटा हो या बड़ा काम हो, यदि सबकी सहमति से कोई कार्य किया जाए तो वह कार्य हमेशा पूर्ण सफलदायक होता है। इसलिए मैं अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि शादी जैसे अटूट रिश्ते में जिसमें कि दो परिवारों का मिलन होता है, उसमें अगर सबकी सहमति हो तभी वो रिश्ता फलता है। अगर कोई भी, चाहे मम्मी हो, पापा हो या भाई बहन हो, कोई अगर इस रिश्ते के खिलाफ है तो कुछ ना कुछ कड़वाहट आ जाती है रिश्ते में, और ये रिश्ता ऐसा है कि जन्म जन्म का रिश्ता है।
जन्म 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 रहेंगे संग संग रहेंगे हम, कदम 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 चलेंगे संग संग चलेंगे हम,
चलेंगे हम। नरेन, क्या तुमने कभी ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर लगी लंबी लंबी लाइनों का आनंद उठाया है?
अंजलि, ऐसा आनंद तुम्ही को मुबारक हो। भाई, मैं ट्रेन में अपना रिजर्वेशन ऑनलाइन करवा लेता हूँ।
भला वो कैसे?
अंजलि, बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन हमारे अगले सेगमेंट काम की बात में।
काम की बात।
दोस्तों, ट्रेन में अपनी टिकट के बुकिंग और रिजर्वेशन ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए घर बैठे करवाई जा सकती है।
सच नरेन?
इतना ही नहीं अंजलि, आप अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन का किराया, गाड़ी कौन से स्टेशन से कितने बजे चलेगी और कितने बजे पहुंचेगी, ये सब कुछ आसानी से इंटरनेट के जरिए घर बैठे इंडियन रेलवे की वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे की वेबसाइट है www.indianrail.gov.in। इसके अलावा आप सभी जानकारियों के लिए 139 नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।
139? ये कैसा नंबर है नरेन?
अंजलि, इस नंबर पर आपको कंप्यूटर के जरिए आपकी जरूरत की सारी जानकारी मिल जाएगी। बस आपको फोन पर कंप्यूटर द्वारा बताई जाने वाली बातों को ध्यान से सुनना है और निर्देशों का पालन करना है।
वाह नरेन, तुमने तो वाकई बहुत काम की बात बताई। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
और नंबर तो हमारा श्रोताओं को याद ही होगा। नंबर है 9197176782223।
हिमायूं पड़ी पहाड़ ठंडा जोसी मठ मा, हिमा म्यारू मन लगी गे तेरी दांतु पटी मा, हिमा म्यारू मन लगी गे तेरी दांतु पटी मा, हिमा माया की रिवाज सची द्वे मा छुपी जा, हिमा माया की रिवाज सची द्वे मा छुपी जा, मेरी माया की गिड़ा कही मा ते मा खुली जा, मेरी माया की गिड़ा कही मा ते मा खुली जा।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है उस विजेता के बारे में जानने का जिसने जीता है आज का इनाम।
तो हमारे आज के विजेता हैं मुंबई के सूर्य प्रकाश अंथवाल। सूर्य प्रकाश अंथवाल जी लिखते हैं कि 2008 जून की बात है, मैं अपने गांव अंथवाल जिला टिहरी गढ़वाल से मुंबई आ रहा था। उन दिनों गुज्जर आंदोलन के कारण कोई भी गाड़ी मुंबई नहीं आ रही थी। फिर दिल्ली में रहने वाले एक रिश्तेदार को फोन किया और उसकी मदद मांगी। मेरे रिश्तेदार ने भी काफी भागदौड़ की, लेकिन किसी भी गाड़ी से मुंबई जाने का टिकट नहीं मिला। फिर हम लोग वहां से हवाई अड्डे गए। पूछताछ के पश्चात मालूम पड़ा कि दूसरे दिन सुबह की फ्लाइट में सीटें खाली हैं। सुबह 7 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ हवाई जहाज में बैठने के लिए तैयार हुआ। हवाई जहाज ने उड़ान भरी तब जाकर मन शांत हुआ। पुराना कड़वा तथा थका देने वाला अनुभव धीरे धीरे दूर होने लगा। आज भी मुझे जब पिछले साल की वो घटना याद आती है तो मन काफी भारी हो जाता है।
मुंबई।
सूर्यप्रकाश जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, सूर्यप्रकाश जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और दोस्तों, अब बारी है आज के संदेशों की, लेकिन उससे पहले एक संदेश जो हमें भेजा है नीलम थापा ने चंबा से। नीलम ने ये संदेश उत्तरकाशी में रहने वाली अपनी बहन सोनम चावला के लिए दिया है। नीलम कहती हैं कि सोनम, हम सब यहाँ पर ठीक हैं और तुम मुझे फोन करके भावना चाची का नंबर दे देना और घर पर सबका ख्याल रखना।
नीलम जी, उम्मीद है कि आपकी बहन को आपका संदेश मिल गया होगा और वो जल्द ही आपको फोन करेंगी।
तो आइए बढ़ाते हैं हम अपने प्रोग्राम को आगे और सुनते हैं आज के संदेश।
मेरा नाम विवेक रावत है और यह संदेश मैं अपने भाई को देहरादून में देना चाहता हूँ, जिसका नाम आदि है। और आदि, कैसे हो? हम सब यहाँ पर तो ठीक है, और मई की छुट्टियाँ पड़ेगी तो हम देहरादून आएंगे और फोन करते रहना। मामा मामी जी को मेरा प्रणाम।
मेरा नाम किशन है, मेरा गांव रानीखेत में है। मैं अपने पापा को रेडियो द्वारा संदेश भेज रहा हूँ। मेरे पापा का नाम श्री लक्ष्मी नारायण है, वे रानीखेत में रहते हैं। पापा, हम यहाँ पर ठीक ठाक हैं, हमारी चिंता मत करना। और पापा, अपनी तबीयत के बारे में ख्याल रखना, धूप में ज़्यादा दौड़ भाग मत करना। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं पैसे भेज दूँगा। बैलों को मत भेजना, जब मैं घर आऊँगा खुद बेचूँगा। बाकी गाँव में सबको मेरी तरफ से नमस्ते कह देना।
मैं देवेंद्र रावत, ग्राम भड़ाज, पोस्ट मचकंडी, जनपद रुद्रप्रयाग बटी, अपना साथी श्री वीरेंद्र खकरियाल जी ते संदेश देना चाहता है कि आपका जो घर में कभी कभी परेशान रहती उनकी तबियत आजकल कंचे, थोड़ा मैं ते इन संदेश दी दिया।
मेरा नाम जयकिशन सकलानी और मैं यहाँ चंबा ठेरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। और दिल्ली बदरपुर में मेरे एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम ब्रजेश सुनियाल है, और मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो मुलाकात का समय निकाले, क्योंकि उनको देखे हुए काफी अरसे हो गए हैं और उनकी हमें बहुत याद आती है।
मैं शुभम प्रसाद, ग्राम कंडारा से, मैं अपने दादाजी को संदेश दे रहा हूँ जिनका नाम श्री जय प्रकाश आर्य है। दादाजी, आप बहुत समय से घर नहीं आए हैं, हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप पूरे परिवार के साथ गाँव आए और चेतन को जरूर लेकर आना।
तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के संदेश। अगर आप भी किसी को अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना संदेश हमारे फोन नंबर पर SMS कर सकते हैं।
नंबर है 9197176782223।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी खास जानकारी है जिसे आप हमारे और अपने बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं, तो आप उन जानकारियों को ईमेल अथवा चिट्ठियों के जरिए हमें भेज सकते हैं।
और हाँ, चिट्ठियों से याद आया कि आप हमें अपने खट्टे मीठे अनुभव भेजना ना भूलिएगा। आप चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और पता एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shahrkior@gmail.com, यानी shehrkior@gmail.com।
और पता है हमारा, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
उधर वो हैं कि जाने को खड़े हैं, इधर दिल है कि बैठा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए आज मुझे और नरेन को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर आपके अपने इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
जब चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।